अब एक बहुत बढ़िया बात है कि वो उसको क्या चाहिए, तपा शौच तो चाहिए ही चाहिए और क्षमा भी चाहिए, शांति रार्जवम। ये नहीं कि जरा सी बात जैसे गरम तवा पे पानी की बूंद धर दी जाती, ऐसे नहीं। तो हल्का जो तवा होता है ना, वो बड़ी जल्दी गरम हो जाता, बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता। तो सहन शक्ति होनी चाहिए जीवन में, ये भी बहुत जरूरी है। कोई चार बातें कह दे तो क्या, कहो नहीं सहो, कह दो, उसमें क्या बात। स्वामी राम जी जो थे वो तो जाते थे चूड़ियों की दुकान पर, और जरा छेड़छाड़ की तो चप्पल बजने लगती थी। फिर कहते थे राम पिट रहा है, और कहे नहीं नहीं तेरे ही को पीट रही। बोले हमें कहाँ पीट रही, ये तो राम को पीट रही। तो भक्तों ने कहा कि महाराज आप क्यों वहां दुकान पर जाते हो। बोले मैं ये देखने जाता हूं कि जब चप्पल बजती तब राम के मन में कैसा होता है, और जब माला गले में पड़ती तब मन में कैसा होता। ये मन परखने की वजह से हम जाते हैं। लो महात्माओं की मौज, अब परखने के लिए वहां जाते हैं पिटने के लिए। तो ये शांति चाहिए, और आर्जो माने सरलता, ब्राह्मण में सरलता होनी चाहिए, आर्जोपना हो, कृत्रिम भाव नहीं होना चाहिए। ओ एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा था तो एक ब्रह्मचारी जी आए, खूब भस्म लगाए और जनेऊ और मृग चर्म हाथ में लिए और पुस्तक वेद की हाथ में लिए, कमंडल ये सब लिए। ब्रह्मा जी के यहां सब देवता लोग थे, सब खड़े हो गए। भाई ब्रह्मचारी तेजस्वी आया, खड़े होकर सबने नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने इशारा किया आसन पर बैठने के लिए, तो कहा कि ये तो आसन पर लोग बैठ चुके तो झूठे हो गए, अब इस पर हम कैसे बैठे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी की, भाई गोदी में बैठ जाओ। तो अपने कमंडल से जल लेकर के और छिड़कने लगे, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुनरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि ही। अरे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कौन हो भैया, हमारी गोदी को अपने जल से पवित्र कर रहे हो, ये गोदी अपवित्र है क्या। बोले मैं तो आप ही का बेटा दम्भ हूं। तो ये दम्भ देवता ऐसे ही होते हैं नारायण, मत पूछो। तो ये दम्भपना नहीं होना चाहिए, दिखावटीपना ना हो, दूसरे को दिखावा नहीं चाहिए। कई बार ऐसा हुआ, दो चेला भेजे गुरुजी ने और उससे कहा कि देखो बनना नहीं तो तुमको मिल जाएगा। तो एक चेला देखा रात में मचान जो होता है खेतों पे, उस पर जाके लेट गया। अब खेत वाला मालिक आया, बोले कौन कले साधु। तो उसने तीन चार जमाए, कहा कि अच्छा साधु बना बैठा यहां लेट गए आकर के। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी हमने तो ठीक कहा, अरे तो तू बना ना साधु, सहज रहता कहता मैं इंसान हूं, तो साधु बने तो इसलिए तुम पिटे गए। अगर साधु ना बनते तो कहता ही, एक कहने का जरूर तम साधु। तो बनना नहीं चाहिए, दम्भ पना न हो, शो दूसरे को दिखावा कुछ न हो। ओ एक महात्मा दसों उंगुलियन में पुखराज है, इसमें नीलम है, इसमें ये है। तो हमने कहा ये अंगुलियां, एक में दो है। तो कहा ये सब महाराज जी चंद्रमा का है, ये मंगल का है, ये बुध का। हमने कि सब ग्रह तुम्ही को घेर लिए आके, और कहीं बचे ही नहीं जो जाते। तो कि ये दूसरे को दिखाने के लिए, शोपना नहीं होना चाहिए, दिखावा। दिखावा क्या, अरे जो है सो है, यही इसी को कहते शांति राजवम। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम, और उसे ये ज्ञान होना चाहिए सब में एक ही वस्तु है। कितने भी स्वर्ण के आभूषण बनेंगे है तो स्वर्ण ही, तो आकारों पर दृष्टि न हो करके जिसमें आकार बने हैं उपादान उसमें दृष्टि होनी चाहिए। आकारों में आकर्षित हो करके टीवी में लाइट भूल जाते हैं कि लाइट का मजा है। तो यहां ये दिखाया गया कि नहीं, ये बात नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए प्रकाश में। आकारों में आकर्षण है, आकार तो भूत प्रेत के बने ना, पांच महाभूत के। अरे मट्टी है, किसी में मट्टी जरा ज्यादा है तो मोटा हो गया, किसी में मिट्टी कुछ कम है, ये तो माटी की बात है ना, मोटा पतला। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सब मिलकर के जैसे जल का बुदबुदा बन जाता तैसे आकार बन गया। पुरिया है, इसमें रस, श्रेक, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र, थूक, खकार, ये सब सामान लिया और पुरिया ऊपर से बांध दी। पुरिया उसी को पुरुष कहते, ये आदमी हो गया, ये नर हो गया, ये नारी हो गई। ओ जो पुरिया है ना, वो ठीक है, किसी की ऊपर पैकिंग गोल्डन है, किसी की आयरन है, तो पैकिंग ही है, इसमें क्या फर्क पड़ता। पुरिया में सामान तो बराबर ही है सबका। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि सब आकार अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप तो रूप अलग अलग होते हैं, स्वरूप एक ही होता है, ये निश्चय होना चाहिए। इसी को कहते हैं ज्ञान विज्ञान। और आस्तिक्यम अस्ति वेदाः, अस्ति वेदाः, अस्ति ईश्वरः, ईश्वर है, वेद है, इसी को आस्तिक कहते हैं। जब वो वेद की बातें न मानेगा, वेद में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया, वेद माने ज्ञान, ये शास्त्र बनाए गए इसलिए कि कानून बनाओ भाई, एक संविधान है। जैसे आप संविधान को मानते हो, लाल बत्ती है तो उतनी देर रुके रहो, चौराहे पर रुको, जब हरी हो तो जाओ, तो ये कानून बनाया विधान। ऐसे विधान बनाया खान पान रहन सहन चाल चलन, ये बातों को बताया गया है कि ऐसे विधि से चलो भाई, ऐसी विधि से खाओ, ऐसी विधि से रहो, न पशु की तरह जब चाहे तो खा लिया, गाय से हाथ जोड़ के कहो हे गाय माता जब भोजन कर लो तब गोबर न करना, वो मान जाएगी क्या, चाहे जितना हाथ जोड़ करो। देखो पशु पक्षी भी इस बात को जानते हैं, गाय के गोबर को गाय की सानी में थोड़ा डाल दो तो सूंघ के हट जाएगी, नहीं खाएगी, गाय का ही उसी गाय का गोबर है, खाएगी नहीं। और अपने गंदगी, बच्चे की कितनी गंदगी होती है पैदा होते समय, और उसको जीभ से चाटती है, जरा देखो सोचो विचारो। माने एक गाय और उसी का गोबर उसी में मिला दिया गया, वो हट गई, और देखो मजे की बात की उसको चाटती है। तो ये कहा गया ज्ञान मास्तिक, आस्तिकता होनी चाहिए, ब्रह्म का है। और शौर्यम तेजा धृतिर्दाक्षम, एक क्षत्रिय का है, शूरवीरता हो, शूरवीरता नहीं होगी तो बेकार। और कौशल होना चाहिए, ये युक्ति सूझबूझ जिसको कहते हैं, नीत नैपुण्य सूझबूझ, एक क्षत्रिय का है। और कृषि वाणिज्य गौरक्षम, खेती बाड़ी बिंज व्यापार, ये वैश्य का है, सेवा करना, परिचर्या करना, सेवक का काम। तो इस प्रकार से कहते हैं इन आश्रमों की बात अगर अर्जुन की तरह रहेगी, जैसे अर्जुन कह रहा था लुप्त पिंडोद का क्रिया जायते वर्ण संकरा, और ये हम जो धर्म कर्म बताया गया है, भगवान ने कहा चुप रह, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग करके एक आत्मा की शरण ग्रहण करो। सब धर्मों का परित्याग करके बोले हाँ, यही है अत्याश्रमस्था का मतलब। कि अगर उस समय तुम्हें ये रहेगा कि क्या बताएं, जल्दी जल्दी कर लें ध्यान, फिर संध्या वंदन करें, ब्राह्मण है, और ये हुआ कि अभी हमें अमुक की रक्षा करने जाना है, या खेती का काम संभालना है, सेवा करना है, तो फिर नहीं बनेगा। ब्रह्मचारी है, गुरु जी की सेवा करनी है, और गृहस्थ है तो घर परिवार की सेवा करनी है, और वानप्रस्थ है तो अमुक काम करना है, सन्यासी है तो भिक्षा लेने जाना है, ये सब अलग रख। अत्याश्रमस्था का मतलब हुआ कि इन सब से सन्यास ले लो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उनके कर्तव्यों का ध्यान न दे करके यही कर्तव्य है कि इस समय हम परमात्मा का चिंतन करें। बस एक ये बात अर्जुन कैसी रह जाए, अर्जुन से पूछा कि जिस समय बाण लगाया तुम क्या क्या देख रहे हो, उसने कहा बस केवल प्रतिबिंब में चिड़िया देख रहा हूं। ये दृष्टि होनी चाहिए तब लक्ष्य वेद हो पाएगा। भाई लक्ष्य है शरीर का प्रकृति से साथ या संसार के साथ संबंध विच्छेद करना। तो शरीर का संसार से संबंध विच्छेद या प्रकृति का जो संबंध जुड़ गया है, अनात्मा आत्मा का, आत्मा अनात्मा का, इसको विविक्त करना है, विवेक करना है। तो जरा इस पर सोचो, आप लोग भी विचार करो, जब आप बैठे हैं और भगवान के लिए बैठे हो तो भगवान के लिए केवल बैठो, फिर आश्रम के लिए अथवा वर्ण के लिए कि ये काम करना है, अभी ये काम करना है, वहां जाना है, वहां जाना, ये सब छोड़ो। उस समय तो केवल है भगवान, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, हे करुणा सागर, आपके से बढ़कर के और कोई महत्व की बात नहीं है मेरे मन में। ये अत्याश्रमस्था का मतलब है। किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का अगर काम धंधा तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो वही चिंतन होता रहेगा। एक चेला ने पूछा गुरुजी ध्यान की विधि बता दे, तो उन्होंने बताई, और फिर अंत में कहा कि देखो एक बात है, बंदर का ध्यान ना आने पावे, तो बेचारा बैठा तो बंदर है आ जाए बार बार मन में। तो अगर ये बात रहेगी तो कुछ न कुछ मन में आता रहेगा, कभी किसी वर्ण की, किसी आश्रम की, कभी घरवाली की याद आएगी, कभी दुकान की याद आएगी। एक सज्जन ध्यान लगाए थे, गुरुजी ने कहा, उसके जूता चले गए थे, वो बाजार में देख रहा था दुकान पर, क्यों रे ध्यान लगाए कि जूता खरीद रहा है, बोले हाँ गुरुजी जूता तो खरीद रहे थे, अब ध्यान लगाए वहां जूता खरीद दुकान पर। इसलिए सब काम से जब फुर्सत मिल जाए इत्मीनान से, तब भगवान के लिए बैठो। अत्यासमस्थः सकलेन्द्रियाणि। और एक बात बढ़िया बताई, यहां चूंकि ब्रह्मा जी ने बहुत संक्षेप में वर्णन किया है, नहीं तो प्राणायाम का भी यहां विधान बताया, इसमें कह दिया कि वो कोई जरूरत नहीं है, बस अपने गुरु जी को प्रणाम कर लो, भक्तिया सुगुरुम प्रणम्य। तो प्राणायाम में एक आपने पढ़ा होगा, गीता में लिखा है नासाभ्यंतर चारणो, कैसे बोले प्राणापान समोकृत्वा। ये थोड़ा कठिन भी है, सहज भी है। प्राण वायु जो जाती है, भीतर जाती है, वो दीर्घ होती है, और अपान वायु बाहर निकलती है वो लघु होती है। तो बाई ओर से आप शुरू करें, बाई ओर पहले इसको ले जाएं और फिर उसको छोड़ें, इसको इसको अनुलोम विलोम दो चार बार करेंगे तो सम हो जाएगी। इसी को कहते प्राणापान समूह कृत्वा, प्राणापानो समाऊ कृत्वा नासाभ्यंतर चारण, नासिका के अंदर विचार करने पर ये दोनों प्रकार का होता है, अंत कुंभक भी होता है वही कुंभक भी होता है। तो जब आप बाई नासिका को दबाओगे तो दाहिनी से हवा निकलेगी और दाहिनी को दबाओगे तो बाई से निकलेगी, ऐसे दो चार बार करोगे ना अनुलोम विलोम तो सम हो जाएगी। तो इससे क्या पहचान मिलेगी सम हो गई, इसकी एक पहचान है और पहचान बड़ी मोटी है कि ये जो वायु का स्पर्श है कंठ में मालूम पड़ता है वो मालूम नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सम हो गई। जब वायु निकलती है और जब वायु जाती है तो वो दीर्घ और लंबे का हिसाब है, ये वायु जब अंदर जाती है वो प्राण वायु है तो वो अंदर वाली दीर्घ होती है और अपान वायु लंबी लघु होती है। तो ये हिसाब लगाना चाहिए नासाभ्यंतर चारो। प्राणायाम बहुत जरूरी है, आठ प्रकार का प्राणायाम होता है, उससे मन एकाग्र हो जाता है और सामान्य रूप से एक चार का अनुपात होता है, माने जितनी देर वायु ली है जितने सेकंड उससे चौगुना सेकंड तक वायु को रोकना चाहिए, उसको कुंभक कहते हैं, और दूसरी नासिका से निकालना चाहिए उसको कहते हैं रेचक। तो एक जैसे मान लीजिए पांच सेकंड में आपने वायु भरी है तो पांच चौको बीस, बीस सेकंड तक रोकना चाहिए कुंभक और फिर दस सेकंड में निकालना चाहिए। करते क्या हैं लोग कि कुंभक तो देर तक कर लेते हैं लेकिन फुर्र दे निकाल लिया रेचक, ये नहीं उतने धीरे 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 आधे टाइम से जितना पूरक किया है वायु ली है उसे दूने टाइम तक रेचन होना चाहिए, नहीं तो उससे नुकसान भी हो जाता कभी कभी, बहुत धीरे 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 निकालना चाहिए। तो प्राणायाम है, वैसे यहां कह दिया भक्तिया सुगुरुम प्रणम। अब देखिए एक बहुत महत्व की बात यहां दी गई, अत्या समस्था च सकलेन्द्रियाणी निरुद्ध, यहां तक बात आई, संपूर्ण इंद्रियों को रोक के और भक्तिया सुगुरुम प्रणम्य, ये दो बातें ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्व का ध्यान योग दिया। पहली बात है संपूर्ण इंद्रियों को रोक के, एक महात्मा को नाक से कुछ नाक जो नर्व है वो जरा डैमेज हो गई, खराब हो गई, तो उनको समझ में नहीं आता कि गंदगी है कि स्वच्छता, तो दूसरे को दिखाते हैं पड़ोसी को, देखो जरा इसमें कोई गंध तो नहीं आ रही। आप भगत लोग कह रहे हैं हमारे गुरुजी ने इंद्रियों का शमन करना शुरू कर दिया है, सबसे पहले नाक से शुरू किया है। तो ये बात नहीं है, संपूर्ण इंद्रियों को एक एक करके नहीं, सकलेन्द्रियाणी निरुद्ध, संपूर्ण इंद्रियों को रोक करके। और एक सामान्य बात यह है कि इंद्रियां काम करती हैं जब मन पीछे होता है, अगर मन नहीं सहयोग करेगा ना तो इंद्रियां आंख खुली हुई रही के सामने वाले दिखेगा नहीं, आंख खुली है लेकिन दिखेगा नहीं, कान खुला है सुनाई नहीं देगा अगर मन वहां नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, मन अगर पीछे होगा, मन प्रकाशक होगा तभी इंद्रियां काम करेंगी। तो यहां जो कहा अत्या समस्था सकलेन्द्रियाणी निरुद्ध, संपूर्ण सकल इंद्रियां बताएं, एक दो नए ऐसे नहीं नंबर से कि हमें एक एक को करेंगे, धीरे धीरे बस में करेंगे। संपूर्ण इंद्रियों को संयत करके, जैसे ये रथ चलाने वाला होता है तो वो जो लगाम होती है घोड़ों की, उस लगाम को एक बार की रोकता है तब रोकती है, और अगर एक की दबाओ एक को कम करो तो वो नहीं रुकेगा। इसलिए सकल शब्द का प्रयोग किया गया, संपूर्ण इंद्रियों को एक साथ रोक करके, इसका मतलब मन को सहयोग न करने दो। मन अगर सहयोगी बन जाएगा अथवा अथवा युद्ध हो रहा हो और उसके समय में शत्रु क्या करे, घोड़ों को हरी हरी घास डाल दे, तो जो शत्रु के रथ के घोड़े होंगे वो घास खाने में लग जाएंगे। अथवा आपने सुना होगा कर्ण का सारथी शल्य बनाया गया था, वो थे मामा धर्मराज के, उन्हें सुख सुविधा दी जरा तो उनकी दुर्योधन की तरफ हो गए, तो मिलने गए कि क्या बताएं, हमें धोखा हो गया, हमने समझा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने ये सुविधा की है लेकिन की थी दुर्योधन ने, अब ऐसा करो भाई, अब हमसे जो कुछ कहो सुकार लड़ेंगे तो हम उंडरी हो। तो भगवान ने कहा धर्मराज से कि ये कह दो कि जब लड़ो तब अर्जुन की तारीफ करते रहना और उसकी निंदा करना। अरे बोले हम सारथी बनेंगे, बोले हाँ अगर शायद बनो, भगवान को तो सब मालूम। तो सारथी बना तो शल्य क्या कहा है, कर्ण देखो देखो देखो, वो मुस्कराते हुए भगवान वासुदेव कैसे बढ़िया बागडोरों को पकड़े हैं और विशाल गांडीव लिए अर्जुन आ रहा है। अरे दर्शन कर ले, जब तक गांडीव से बाण निकल के तुम्हारी गर्दन काट नहीं देता है तब तक दर्शन कर लो। कर्ण बोला अरे क्या बकता है वो, अरे हम परशुराम के शिष्य हैं। बोले वो तो है लेकिन तुम्हें वो कथा नहीं मालूम है, एक बार मानसरोवर के कुछ हंस आ गए तो कौआ बहुत से बैठे थे धरती पर, तो कौआ ने कहा एक ने, बोले तुम हंस हो क्या, हाँ मानसरोवर रहते, हाँ यहाँ कैसे आ गए, बोले ऐसे आ गए, तुम कितनी कलौटे जानते हो, बोले भैया हम कलौटे तो नहीं जानते हैं, हम तो उड़ के जाते आते, बोले हम सौ जानते हैं, चलो हमारी देखो चले। अब हंसों ने कहा कि तुम्हारी क्या देख है, तुम अपना करो, बोले नहीं नहीं तो देखना पड़ेगा। तो हंसों में बुजुर्ग जो था उसने कह दिया जाओ देखे, अब भाई जब थक जाए तो ले आना। अब गया कौआ इधर करे उधर करे, दो चार कलौटे लिए थक गए, अब हाय बचाओ हाय बचाओ, तो हंस ने कहा भैया हमारी पीठ पे आ जाओ, पीठ पे आकर के किनारे पर रख दिया, वही कौआ तुम हो, ये सारथी कह रहा है। तो बताओ इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कर्ण का ऐसा सारथी अगर मिल गया, सारथी है बुद्धि और है इंद्रियां हैं घोड़े, मन है लगाम, इंद्रियाणि हयान्याहु मनः प्रग्रमेवच आत्मानम रत्नम बुद्धि और बुद्धिम सारथिमेवच, बुद्धि सारथी है। तो अगर जैसा मन कहा वैसी बुद्धि नाचने लगी तो गड़बड़ है, या कहो बुद्धि निश्चय करती वैसा नाचना चाहिए तब बने ठीक। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा न हो इंद्रियां हमारी इधर उधर होए और मन रूपी लगाम गड़बड़ है, जिधर को मन चाह उधर को कर दिया, बोले चलो कोई बात नहीं, जरा देखने में कोई हर्ज नहीं, फिर छूने में कोई हर्ज नहीं, तो ऐसे ही हर्ज नहीं में आगे बढ़ जाएंगे। ये बात है, इसलिए कहा गया सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या सुगुरुं प्रणम्य हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ जीवन निरर्थक जाने न पाए जीवन, ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन बोलो कृष्ण भगवान की। इस समय पांचवें मंजिल पर शाम के 5:30 से 7:30 तक जो राम कथा हो रही है, ऐसी आपने साहित्य कभी सुनी हो? संगीतमय कथा, बड़े सुंदर दिव्य भाव भरे निकलते हैं। तो जिनको समय सुविधा रुचि हो वो उसको सुनो और गुनो, मनन करो, देखो कितना लाभ होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।